ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब आप जाने को हैं, जाने को हैं। जो आपको सिद्धांतों की बहुत सी बात बताई वो तो आपको अपने विचार क्षेत्र में स्थिर रखने की हैं और भावना क्षेत्र में समावेश करने की हैं, लेकिन विचार क्षेत्र और भावना क्षेत्र इन दो क्षेत्रों के अलावा भी एक क्षेत्र बच जाता है, वो है क्रिया क्षेत्र। आपको करना क्या चाहिए, अब ये स्पष्ट लेके जाइए। करने को ही लोग सब कुछ समझते हैं, करने को मैं सब कुछ तो नहीं समझता, चिंतन को भी, चिंतन की भावना की भूमिका में बहुत अधिक समझता हूँ, लेकिन तभी कृत्यों के बारे में लापरवाह नहीं हो सकते, कृत्यों की उपेक्षा भी नहीं कर सकते। कर्म की उपेक्षा हम कैसे करेंगे, ज्ञान का अपना स्थान हो सकता है, भक्ति का अपना स्थान है, लेकिन कर्मयोग भी तो कोई चीज़ है। गीता में तो कर्मयोग का ही उपदेश दिया है, इसलिए कर्म आपको क्या करने हैं यहाँ से जाकर के इसके बारे में थोड़ी सी संक्षेप में आपको जानकारी कराए देते हैं, इनको आप नोट रखिए। तो यहाँ से जाने के बाद में इन क्रियाओं के बारे में बहुत सावधानी से अपना आचरण कीजिए। यहाँ से जब आप जाएँ तो अपनी साधना को बिल्कुल नियमित कर लें। साधना के बारे में एक ही खराबी है, लोग उपेक्षा से करते हैं, समय का ध्यान नहीं रखते, कभी करते हैं कभी नहीं करते, या श्रद्धापूर्वक करते हैं, इसलिए साधना अस्त व्यस्त हो जाती है। साधना भी चिकित्सा की तरीके से है, व्यायाम की तरीके से है। आप व्यायाम समय पर करेंगे, नियमित रूप से करेंगे तो व्यायाम का फायदा मिलेगा। कभी आपने 100 बैठक कर ली, कभी 2 बैठक कर ली, 3 दिन बंद कर दी, 6 दिन बहुत जोर से किया, तो व्यायाम से लाभ के स्थान पर हानि होगी। घी कभी आपने 6 खा लिया, कभी पावर खा लिया, कभी आधा किलो खा लिया, कभी एक बूंद पी लिया, ऐसी कोई बात बनती है क्या? दवा है, दवा की एक सीमा है, दवा की एक मर्यादा उसकी खुराक होती है। चंद पैसा भले आज तो 1 छटाक खाएंगे, कल 3 छटाक खाएंगे, कल 1 रत्ती खाएंगे, कल सवेरे खाएंगे, आज दोपहर को खाएंगे, 3 दिन बिल्कुल नहीं खाएंगे, कई ऐसे लाभ होते हैं। नियमितता का बहुत लाभ है, उपासना का नियमितता का बहुत लाभ है। आप यहाँ से जाने के बाद में अपनी उपासना को बिल्कुल नियमित बना लीजिए, उसमें आलस्य की वजह से, प्रमाद की वजह से कभी कोई गलती न होने पावे, इसके लिए आप दो बंधन लगा दीजिए, भोजन से पहले अथवा सोने से पहले। आप बंधन बांध दीजिए, भोजन नहीं हो सका तो ठीक है, खाना भी नहीं खाएंगे, ये सब खाना तो बहुत ज़रूरी है, तो सोएंगे नहीं, चलिए रात को आप 1 घंटे पीछे सोइए, आधा घंटा पीछे सोइए। जो भी आपने उपासना का क्रम बना रखा है आप उसको पूरा कर लीजिए। आप भोजन में डिले नहीं कर सकते तो आप सायंकाल को सोने में देर कर लीजिए, अगर आप बहुत व्यस्त हैं तो। कोई व्यस्त ऐसा नहीं है कि जो आधा घंटे का समय नहीं निकाल सकता हो। न्यूनतम उपासना आधा घंटे की हमने बना दी है, और आधा घंटे की उपासना को प्रज्ञा योग कहा है। प्रज्ञा योग तो आपने पढ़ लिया होगा, प्रज्ञा में सारी बातें जब बता दिया, ध्यान चिंतन मनन वो जीवन की साधना, सब समग्र साधना है। ऐसी अच्छी, इससे अच्छा कॉम्बिनेशन साधना का कहीं नहीं हो सकता है। इसमें ब्रह्म विद्या से लेकर के तपश्चर्या तक का, योगाभ्यास से लेकर के संयम साधना तक का सारा समावेश हो गया है। आप प्रज्ञा योग को तो मैं यहाँ नहीं बता सकता आपको, वो अपने छोटे पुस्तिका में पर्चों में छिपा हुआ पड़ा है। आप उस प्रज्ञा योग के नियम बना लीजिए, वो आधा घंटे में पूरा हो जाता है। आधा घंटे के हिसाब से दैनिक उपासना आप करते रहिए, इतना तो आप कम से कम कर सकते हैं। मैं कम से कम की बात करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तो आप चाहे कुछ करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमने कम से कम की मर्यादा बना दी है। 10 पैसे कम से कम है, 10 पैसे तो आप लोकहित के लिए निकालिए, ज़्यादा बंधन नहीं है, आप चाहे इतना निकालिए, 10 रुपये रोज निकालिए, कौन मना करता है। इसी तरीके से 1 घंटा समय की बात कही है, वो न्यूनतम है, इससे कम मत कीजिए, ज़्यादा भले कीजिए। आपको आधा घंटे से कम प्रज्ञा योग के माध्यम से अपनी उपासना नहीं करनी चाहिए, इतना तो कीजिए। और एक बात फिर और ध्यान रखिए, उपासना का मतलब करके कीजिए, नहीं तो फिर मत कीजिए। उपासना का मतलब सिर्फ एक है, अपने कलुष कषायों का परिष्कार, अपनी पात्रता का संवर्धन, अपने गुणकर्म और स्वभाव विशेषताओं का समावेश। अगर आपने अपनी उपासना को दूसरे फुहर लोगों की तरीके से घिनौना बना रखा होगा तो उपासना भी नहीं रह जाएगी। उपासना को आप कामनाओं के साथ मत जोड़ें। उपासना को जब आप कामनाओं के साथ जोड़ देते हैं तो उसको आप उसका स्वरूप ही नष्ट हो जाता है और वो एक घिनौनी वस्तु बन जाती है, उसका महत्व सब चला जाता है। आपसे तो मुसलमान अच्छे हैं, मस्जिद में जाते हैं, नमाज़ पढ़ के वापस आ जाते हैं। कभी किसी मुसलमान को मौलाना से ये कहते हुए नहीं पाया हुआ होगा, हमारे मुकदमे में फतेह करा दी। ईसाई आपसे ईसाई अच्छे, जब भी जाते हैं गिरजे में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करने के बाद में घर वापस चले आते हैं। कोई मौलवी साहब से ये नहीं कह, उसको उनके पादी साहब से नहीं कहता बाल बच्चे होने चाहिए, कोई नहीं कहता, कोई नहीं कहता। सिखों के यहाँ गुरुद्वारे में लोग जाते हैं, भगवान की भक्ति की बात कहते हैं, ज्ञान ध्यान की बात कहते हैं। कोई आदमी ज्ञानी जी से ये नहीं कहता कि हमारा ये काम करा दीजिए और हमारे व्यापार में तरक्की करा दीजिए। आप ही हैं, कैसे गंदे आदमी, कैसे गंदे आदमी, कैसे गंदे आदमी। आपने भगवान की भक्ति का जाने कैसा स्वरूप बना दिया। हिंदू समाज के ऊपर मुझे बड़ा क्रोध आता है कि अपना सारा दर्शन, उच्च स्तरीय दर्शन को ख़त्म कर दिया, उपासना को ही ख़त्म कर दिया, भगवान को ही ख़त्म कर दिया, साधना की विधि को ही ख़त्म कर दिया। कम से कम इसे तो जिंदा रहना चाहिए था, इसको तो केवल आत्मकल्याण के लिए जोड़ के रखना चाहिए था, अंतरात्मा की शांति के लिए जोड़ के रखना चाहिए था। कामनाएं 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 कामनाएं, जो दुष्टो कामनाएं खा जाएगी तुम। भगवान का जो भक्ति का आनंद ले सकते थे वो भी तुम कामना के नरक में ढकेल करके इसका भी मत खो बैठोगे। और तो तुम्हारे पास कुछ है नहीं, थोड़ी सी बात राम के नाम की लेने की पूजा उपासना की हाथ आई थी, शायद वो आपकी जीवात्मा के लिए काम आ सकती है, पर आप क्या कर सकते हैं, आप तो उसको भी गिरा डाल दें। ऐसा मत करना, अच्छा आप तो मत करना, दूसरे लोग क्या करते हैं करने देना। आप सिर्फ अपनी उपासना को आत्म परिष्कार के लिए और अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए और अपने गुणकर्म स्वभाव के संवर्धन के लिए बस इसी की उपासना का लक्ष्य रखना। आप चमत्कारों के लिए मत रखना, हम तमाशा देखेंगे। उपासना में क्या तमाशा होते हैं, साहब जान ये चक्र चमकेंगे और कुंडली चमकेगी और रात को सपने दिखेंगे और गणेश जी दिखेंगे और आज्ञा चक्र चमकेगा और यमुक चमकेगा, तमाशे देखेंगे। आप यहाँ कोई सिनेमा हो रहे हैं क्या? आप सिनेमा देखने के लिए, तमाशा देखने के लिए अगर आपने उपासना किया चमत्कार देखने के लिए, तो आपको धिक्कार है। और आपको ये कहना पड़ेगा आपने अभी आध्यात्मिकता का और उपासना का आई भी नहीं पढ़ा है, आप इसके प्रारंभिक सिद्धांतों से भी जानकार नहीं है। कैसी गंदी हवा चल पड़ी है लोगों में, गंदी हवा चल पड़ी है। गंदी हवा में आप भी बहेंगे क्या? आप मत बहिए, न चमत्कार देखिए। चमत्कार आदमी के अंदर है यही है एक, कि दुनिया कैसे घिनौने रास्ते पर चलती रहती है, गए बीते रास्ते पर चलती रहती है। आप एक अच्छा रास्ता अख्तियार करते हैं, अपने पैरों पर खड़े जाते हैं, अपनी राह आप बना लेते हैं, क्या चमत्कार नहीं है? इससे बड़ा और क्या चमत्कार हो सकता है? आप इतना ही चमत्कार काफ़ी मानिए। आप अपने भीतर से अंतर प्रेरणा को विकसित होने दीजिए और ये अनुभव होने दीजिए कि भगवान के नज़दीक आने के बाद में उनको उनकी विशेषताओं का लाभ मिलेगा, उनकी सहायता का नहीं, उनकी विशेषताओं का, उनकी प्रेरणाओं का लाभ मिलेगा, उनकी दौलत का नहीं, आप उनकी प्रेरणाओं का लाभ लीजिए। इस तरीके से आप दैनिक उपासना में रोज आधा घंटा लगाते रहें तो मज़ा आए। यहाँ से जाने के बाद में आप एक काम ज़रूर करना कि आप आलस्य और प्रमाद से निजात पाना। दूसरी भी बहुत सारी बुराइयाँ हैं आदमी की ज़िंदगी में, जिसको हम क्राइम कहते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें, चोरी उठाई गिरी वगैरह। लेकिन एक और भी क्राइम है, एक और भी अपराध है, वो अपने ऊपर हमला करना, आत्महत्या कर बैठना। दूसरों की हत्या करना तो बुरी बात है, दूसरों का भविष्य को अंधकार में बना देना तो बुरी बात है, लेकिन अपना भविष्य को अंधकार में बना लेना ही कौन अच्छी बात है, अपनी आत्महत्या कर डालना ही कौन अच्छी बात है। ये आलस्य और प्रमाद को मैं इसी संज्ञा में गिनता हूँ। शरीर की दृष्टि से जो आदमी निकम्मे बैठे रहते हैं, निशल्ले बैठे रहते हैं, पसीना बहाते नहीं हैं और समय को बर्बाद करते रहते हैं, इन आलसियों को मैं क्या कहूँ और उन प्रमादियों को क्या कहूँ, जो बैल की तरीके से मेहनत तो करते रहते हैं पर उसमें मनोयोग लगाते ही नहीं है, दिलचस्पी लेते ही नहीं है, प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाते ही नहीं है काम को, उसकी बारीकी में घुसते ही नहीं है। बाहर से सतही काम कर दिया, मैं सही से काम करा दिया, बेकार भगदी बात कैसे बनी। आप यहाँ से जाने के बाद में अपनी कार्य पद्धति में ये बात शामिल करना, आलस्य प्रमाद को हटा देना, आप जिम्मेदारी और वफादारी को शामिल करना, आप स्फूर्ति को शामिल करना। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बची हुई ज़िंदगी के पास जो समय आपके पास बचा है, शक्ति बची है, श्रम बचा है, उसके आपको कितने बड़े चमत्कार मिलते हैं, कितनी सिद्धियाँ मिलती हैं। आदमी ने सब कुछ गंवा दिया और इस गंवाने में बहुत सारे सुराख थे, लेकिन सबसे बड़े सुराख दो हैं, प्रमाद और आलस्य। दिमागी कायरता काहली और शारीरिक कायरता काहली, ये आदमी के सबसे बड़े हैं दुर्गुण। और भी बहुत से दुर्गुण हैं, नशा पीना वगैरह, पर इस दुर्गुण से तो पग पग पर आदमी अपने आप को बर्बाद करता जाता है। आप यहाँ से जाने के बाद में आलस्य प्रमाद से बचने की हर चंद कोशिश करना, आप अपनी टाइम टेबल बनाना, दिनचर्या बनाना, व्यस्त रहना, खाली समय मत जाने देना, विश्राम करना हो तो टाइम से विश्राम करना, काम की काम को चाल को धीमी मत करना, काम को जब करना हो तो पूरी स्फूर्ति और पूरी मेहनत से करना है, जिसके जिससे उसका आउटपुट तो कुछ निकले, आपके काम का कुछ परिणाम ही नहीं निकलता। सारे दिन मेहनत करते रहते हैं, सारे दिन इधर बैठ गए, ये कर लिया वो कर लिया, ऐसे ढीले पोले मन से बेकार भुगतने की तरीके से कोई काम करने के बाद में उसका कोई पूरा परिणाम निकलता है क्या? नहीं। आप यहाँ से आलस से प्रभाव को छोड़ जाओ, आप यहाँ से मेहनतकश और परिश्रमशील और कर्मयोगी बन के जाना, ऐसा कर पाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। एक इसके सिवाय एक और आपको शिक्षण है मेरा कि आपने अपना कुटुंब पाल लिया है, आप कुटुंब में रहते होंगे, चाहे पुराना कुटुंब है तब या आपने नया बना लिया तब, जैसा भी कुटुंब हो, आप इस कुटुंब के बारे में दो ख्याल हटा देना, दो ख्याल बढ़ा देना। एक ख्याल ये बढ़ा देना कि आप इस कुटुंब के मालिक हैं और इनकी मर्जी को पूरा करके आप इनकी प्रसन्नता को ग्रहण करें, आप ये ख्याल करते रहेंगे तो आपके कुटुंब में कभी शांति नहीं होगी। लोगों की मर्जी के ऊपर चलेंगे, कितनी तरह की मर्जियाँ हैं, औरत आपसे कुछ चाहती है, बेटे आपसे कुछ चाहते हैं, कोई क्या चाहता है, कोई क्या चाहता है, जो चाहना है उसमें से अधिकांश अनैतिक होती हैं, अनैतिक होती हैं, अस्वाभाविक होती हैं, ऐसी होती हैं कि वो हराम की और बिलासी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो आपसे आपसे सहायता कहते हैं, ऐसा मत करना। आप अपने कुटुंब के बारे में दो तीन बातें ख्याल रखिए। एक बात ये ख्याल रखिए कि इनमें से हर आदमी को स्वावलंबी बनाना है, अपने पैर पर खड़ा करना है, आपकी कमाई ना खाए कोई, आप अपने पैर पर खड़ा हो जाए, अपने पैर से खड़ा कर देना आपका काम, अपने बच्चे हों चाहे बुढ़े हों चाहे औरत हो चाहे जवान हो, हर एक के लिए आप ये दृष्टिकोण रखिए कि इसमें से हर एक को हम स्वावलंबी बना देंगे। स्वावलंबी आप हैं अभी तो, कल भगवान करे आप नहीं रहे, फिर ये किसके सहारे खड़े होंगे, आपकी बीवी किसके सहारे गुजारा करेंगी, इसलिए आप स्वावलंबी बनाइए। एक संस्कारवान बनाइए, संस्कारवान आप बना सकते हैं। संपन्न बनाना तो आपके हाथ की बात नहीं है, आप लाख करोड़ रुपया अपनी औरत के लिए छोड़ के मरें ये मुमकिन नहीं है, आप कितनी योग्यता ही नहीं है, परिस्थिति नहीं है, व्यापारी नहीं है, साधन नहीं है, लाख करोड़ कैसे कमा पाएंगे, रोजाना का गुजारा करना ही तो मुश्किल पड़ता है, लोग रोज कुआं खोदते हैं रोज पानी पीते हैं, फिर ये उम्मीदें करना कि कोई आदमी इतनी दौलत छोड़ के मरेगा जिससे गुजारा हो जाए पीछे वालों का। आप स्वावलंबी बनाइए, हर एक को स्वावलंबन की शिक्षा दीजिए, बच्चे थोड़े बड़े हो जाए तब से उनको वहाँ से सिखाइए, पढ़ने भी दीजिए, लेकिन पढ़ने के साथ साथ में ये बिल्कुल मुमकिन है कि इनको किसी न किसी रूप में आप घर का कोई ऐसा काम करा सकते हैं जिससे कि पैसे कमाए नहीं जा सकते तो बचाए जा सकते हैं, कपड़ा धोने से लेकर के दूसरे ढेरों काम ऐसे हैं टूट फूट के मरम्मत तक, जिससे कि आप अपना कमा तो नहीं सकते पर जो बचा लेना ये भी एक कमाई के बराबर है। आप अपने कुटुंब में पंचशीलों का समावेश कीजिए, ये पंचशील पंच रत्नों की बराबर, समशीलता मेहनतकश, आपके कुटुंब के हर आदमी को मेहनतकश होना चाहिए, परिश्रमशील होना चाहिए, परिश्रमशील होना चाहिए, आपके घर का कोई एक भी आदमी हरामखोर ना हो, कोई आदमी कामचोर ना हो, आप ऐसे कोशिश करें तो आप जानना चाहिए कि आप अपने घर वालों के लिए एक बड़ी बेशकीमती दौलत छोड़ के रखी। दूसरी बात है पंचशीलों में सुव्यवस्था, जिसमें सफाई भी आती है, सुसज्जा भी आती है, हर चीज़ को यथास्थान रखा जाए, कोई यहाँ पड़ा है कोई वहाँ पड़ा है, अस्त व्यस्त जगह पड़ी हुई चीज़ें गंदगी कहलाती हैं, चाहे भली से कूड़ा हो लेकिन अगर यथास्थान रखा गया है तो वो सुंदर मालूम पड़ेगा। सुव्यवस्था हर चीज़ को, समय की सुव्यवस्था, खान पान की सुव्यवस्था, टाइम टेबल की सुव्यवस्था, चीज़ें रखने की सुव्यवस्था, सफाई की सुव्यवस्था, अपने घर में हर ओर देखिए कि आपका घर स्वच्छ रहता है कि नहीं, और आपके घर वालों का कि दिनचर्या सुव्यवस्थित है कि नहीं, सुव्यवस्था को आप ध्यान रखें तो ये परिवार का पंचशील। शालीनता, शराफत, भलमनसार, शराफत भलमनसार, जो आदमी आपके विरोधी हैं या जो नुकसान पहुंचाते हैं उनसे लड़िए तो ज़रूर, ये तो मैं नहीं कहता खराब आदमियों से आपको लड़ना नहीं चाहिए, उनकी बदमाशी बर्दाश्त करनी चाहिए, लेकिन आप ये लड़ाई लड़ते हुए भी आप अपनी शराफत जारी रखें, शराफत को मत गंवाइए, शराफत को आप गंवा देंगे तो बहुत बुरी बात है, शालीनता को मत गंवाइए, सज्जनता आपकी संपदा है, वो आपके स्वभाव का अंग है, आप शराफत और स्वाधीनता और सज्जनता को बिल्कुल कम मत होने दीजिए। एक चौथा गुण एक ये है कि मितव्ययता, किफायतशाली, पैसा कमाना में समझदारी भी हो सकती है लेकिन सबसे ज़्यादा समझदारी उसके पैसे को खर्च करने में, जो लोग बेसा पैसा खर्च करते हैं उसके बदले में बहुत चीज़ें बुराइयाँ खरीद लेते हैं और उसके सामने विलासता खरीद लेते हैं, दुर्व्यसन खरीद लेते हैं, पैसा का फिजूल खर्च होना बुरी बात है। कंजूसी करना, कंजूसी तो मैं सिखाता नहीं हूँ पर मैं ये कहता हूँ आप अपने पैसे को ऐसे काम में खर्च कीजिए जिससे आपका हित होता हो, आपके बच्चों का हित होता हो, समाज का हित होता हो। किसी हित के काम में खर्च कीजिए, अपव्यय में मत खर्च कीजिए, फैसद में मत खर्च कीजिए, फिजूल खर्ची में मत खर्च कीजिए। अगर आप फिजूल खर्ची की आदत डाल लेंगे तो आपके घर वाले लोग थोड़े दिन में आप देख लेना कर्जदार हो जाएंगे, ऋणी हो जाएंगे, रिश्वतखोर हो जाएंगे, बेईमान हो जाएंगे और सारी की सारी जीवन की सुव्यवस्था गंवा देंगे। मितव्ययता का सूत्र सादा जीवन उच्च विचार का सूत्र है। जो जिसका सादा जीवन होगा, जो किफायतदार होगा, ऊंचा जीवन उसी का रह सकता है, किसी का नहीं। आप अपने घर में उदार सहकारिता का पांचवा सूत्र, सहकारिता, एक दूसरे को सहकार हो, ऐसा नहीं खाना खाया और भागे, नहीं, एक दूसरे को। बड़े लड़के से कहिए छोटे भाई को पढ़ाया करे घंटा, बड़ों को कहिए छोटे की सहायता करे। हर आदमी सराय की तरीके से रहता है, भटियारों की सराय में जैसे मुसाफिर आते हैं रोटी खाकर भाग खड़े होते हैं, आपका परिवार वैसा नहीं होना चाहिए। इसमें सहकारिता जुड़ी रहनी चाहिए, एक दूसरे की सेवा जुड़ी रहनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति मोहब्बत जुड़ी रहनी चाहिए। अगर आपने ये पांच सील अपने कुटुंब में शामिल कर लिए तो आप समझना आप यहाँ जो आए हैं पंचकोशों का जागरण करके चले गए। पंचशीलों में फिर एक बार याद रखिए, समशीलता एक, सुव्यवस्था दो, सज्जनता तीन, मितव्ययता चार और उदार सहकारिता पाँच। आप पाँचों को हरचंद कोश कीजिए और अपने जीवन में इनको लाइए पहले, फिर आपकी देखा देखी दूसरों में आएंगे। आप अपने भीतर इनको बढ़ाइए और दूसरों के को बढ़ाने के लिए दबाव डालिए। आप समझाइए भी, समझ से न मानते हो तो आप दबाव भी डाल सकते हैं। प्यार करना ही एक काम नहीं है, दबाव डालना भी एक काम है। एक आँख प्यार की और एक आँख सुधार की हमें से हर एक आदमी को रखनी चाहिए। अगर आप किसी को सुधारना है तो आप एक आँख टेढ़ी भी रखिए, किसी को मोहब्बत देनी है तो एक आँख सीधी भी रखिए। दोनों तरीके से करेंगे तो ही बात बनेगी। आप हर एक के ऊपर झल्लाते रहेंगे और नाखुश होते रहेंगे तो भी बात बनने वाली नहीं है, और आप अनावश्यक रूप से किसी की प्रशंसा करते रहेंगे और प्यार देते रहेंगे तो भी बात बनने वाली नहीं है। दोनों को समान रूप से इस्तेमाल कीजिए और अपने कुटुंबियों के आप माली बन के रहिए, मालिक बन के मत रहिए। मालिक बनेंगे तो बहुत हैरान होंगे, आप सिर्फ अपना कर्तव्य यह मान के चलिए इनको पानी लगाना है, काट छांट करनी है, पानी लगाना है, काट छांट करनी है, रखवाली करनी है। आप अपने कुटुंब की रखवाली कीजिए, काट छांट कीजिए, पानी लगाइए। मालिक बनने की कोशिश करेंगे तो आप अपना मानसिक संतुलन गंवा बैठेंगे। स्त्री के आप मालिक बनेंगे तो उसने कहना न माना तब तो आप कितने हैरान हो जाएंगे। आप अपनी धर्मपत्नी के लिए अपने कर्तव्य फर्जों को पूरा कीजिए, यह आशा मत धर्मपत्नी से कीजिए, मत किसी से कीजिए कि दूसरे आदमी अपना कर्तव्य निभाएंगे कि नहीं निभाएंगे। हो सकता है दूसरे आदमी नहीं निभाए, तब किस तरीके से करेंगे। आप यहाँ से जाने के बाद में एक और काम करना कि अपनी संकीर्णता को छोड़ के चले जाइए यहाँ से, आप उदार होकर चले जाइए। आप याचक न बनिए, आप अभावग्रस्त न रहिए, आप कंगले होकर के जीवन न जिए, आप दरिद्र होकर के जीवन नहीं जिए। आपके पास क्या क्या कमी है ज़रा बताना तो सही। आपने एक अभावों की फहरिस्त बना रखी है, ये कम और एक नई फहरिस्त बताइए। ये दूसरों से ये ज़्यादा, ये ज़्यादा दूसरों से, लाखों से ये ज़्यादा। अगर आप इस तरह की एक फहरिस्त बना लें तो आपको अपने सौभाग्य का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। आप अपने आप को अनुभव करेंगे कि हम कहीं से कहीं चले गए। आप क्या काम करेंगे, आप स्वाध्याय और सत्संग, इन दो क्रमों को आवश्यक मानेंगे। सत्संग किस तरीके से करें, सत्संग तो मिलना मुश्किल है, पर लोगों को, अपने घर वालों को, लोगों को नसीहत देने का, शिक्षा देने का, कथा कहने की बात जारी रखिए। और स्वाध्याय को आप हर एक का नियम बना लीजिए। आपको उचित और मुनासिब शिक्षा कहीं से नहीं मिल सकती, केवल स्वाध्याय से मिलेंगे। प्राचीन काल में सत्संग भी होते थे, संत महात्मा होते थे, ज्ञानी गुणी होते थे, मतलब कहीं संत हैं न कहीं महात्मा हैं न कहीं ज्ञानी हैं न कहीं गुणी हैं। अगर हैं तो उनके पास टाइम नहीं, आप किसे दो चार मिनट बात करेंगे, आपसे लंबे समाधान कौन करेगा, रात भर कौन बैठा रहेगा आपके पास, दो घंटे सिर कौन फोड़ेगा। फिर एक दिन मान लीजिए फोड़ भी दें तो रोजाना कैसे करेंगे, आप उनके पास किस तरीके से रहेंगे, वो अपना काम छोड़ के आपके पास कैसे आएंगे। इसीलिए एक ही तरीका है सत्संग का, जो सत्संग बहुत ही शानदार चीज़ है, इसका तरीका है स्वाध्याय। आप किसी पुस्तक को पढ़ते हैं तो उसके जो लेखक है उससे आप उसी वक्त मिलना शुरू कर देते हैं। आप विवेकानंद से मिल लीजिए, आप गांधी जी से मिल लीजिए, आप विनोबा से मिल लीजिए, आप ऋषियों से मिल लीजिए, जिससे मिलना चाहें तब उसी वक्त मिल लीजिए। ये कैसे हो सकता है, उनको मरे बहुत दिन हो गए पर साहित्य को मरे हुए बहुत दिन नहीं हुए। आप यहाँ से जाने के बाद में ऐसे ही करना, आप यहाँ से जाने के बाद में ये अनुभव करना कि आप शरीर नहीं हैं, आत्मा हैं, आप शरीर नहीं है, आत्मा है, अपनी हैसियत बदल ले जाइए। आपने सारी ज़िंदगी बस शरीर के दृष्टि से अपने आप को छोटा या बड़ा समझा है और सारी ज़िंदगी बस शरीर के लिए जिए, शरीर को खिलाना, शरीर को पिलाना, शरीर को देखना, शरीर को सोहमान बनाना, शरीर का ध्यान रखना। अब आप यहाँ से जाने के बाद में आप नया जन्म लेकर के जाना, आत्मा का जन्म। आपका मूल सत्ता आत्मा है, शरीर तो आपका वाहन है, इसलिए आपको आत्मा का हित देखना पड़ेगा, आत्मा का संतोष देखना पड़ेगा, आत्मकल्याण की बात सोचनी पड़ेगी और आपका भविष्य किस तरीके से शानदार बने से विचार करना पड़ेगा। इसलिए आप अपने आत्मा को ध्यान रखिए, शरीर को और आत्मा को दोनों को महत्व दीजिए, आप दोनों के लिए बांट दीजिए। आपके पास समय है, दो समय बांट दीजिए, आपके पास साधन है, दो समय बांट दीजिए, आधा शरीर के लिए आधा जीवात्मा के लिए। अगर ऐसा करेंगे तो आप पुण्य की बात सोच पाएंगे, परमार्थ की बात सोच पाएंगे, लोकमंगल की बात सोच पाएंगे और न केवल सोच पाएंगे और उसके लिए व्यवहारिक कदम भी उठाएंगे। आत्मा के लिए समय दान कीजिए, आपका सारे का सारा समय शरीर के लिए खर्च किया, अब आत्मा के लिए समय निकालिए, परोपकार के लिए समय निकालिए, परमार्थ के लिए समय निकालिए, आप उनके लिए भी समय निकालिए, केवल शरीर के लिए कुटुंबियों के लिए सारा समय खर्च कर देंगे। आप अजदान निकालिए, साधन जो आपके पास हैं वो सारे के सारे साधन औलाद के लिए खर्च मत कर डालिए, जो साधन आपके पास हैं केवल शरीर के लिए मत खर्च कर डालिए, इसमें दूसरे भी हिस्सेदार है, आत्मा भी हिस्सेदार है, आत्मा के लिए भी अपने साधनों को निकालिए, लोकमंगल के लिए साधन, परमार्थ प्रयोजनों के लिए साधन, सत्प्रवृत्तियों के लिए साधन, आज के युग को बदल डालने के लिए साधन आपके लगने चाहिए, आपके साधन और समय, आपके साधन और समय, आपका अंशदान और समयदान, ये नियमित रूप से लगते रहना चाहिए। बात बहुत पुरानी हो गई, जब टोकन के रूप में हमने इनको प्रारंभ कराया था तब कहा था हमने 10 पैसे डाला कीजिए, आज 10 पैसे किसे कहते हैं, आज बताइए, 10 पैसे 35 वर्ष पुरानी बात है, आज तो 35 वर्ष की महंगाई कहाँ गई, आजकल 10 पैसे क्या आता है, आप ज़रा बताइए, चाय 80 पैसे की आती और 10 पैसे क्या आएगा, 1/8 कप चाय आएगी, अर्थात एक घूट चाय आएगी, एक घूट चाय से आप भगवान का, समाज का, देश का सब ऋण पूरा कर लेंगे। आप हर काम में महंगाई बर्दाश्त कर रहे हैं, खाने में महंगाई बर्दाश्त कर रहे हैं, कपड़े में महंगाई बर्दाश्त कर रहे हैं, बच्चों की शिक्षा में महंगाई बर्दाश्त कर रहे हैं, रेल किराए में महंगाई बर्दाश्त कर रहे हैं, तो समाज के हित के लिए क्यों महंगाई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपकी उदार बनिए, अंशदान के बारे में उदार बनिए, 1 घंटा समय, कभी हमने कहा था जब आप शुरू में थे, बच्चे थे, अब आप तो बड़े हो गए, आप समय भी ज़्यादा समाज के लिए निकालना और अपना अंशदान भी समाज के लिए निकालना, ये बात याद रख करके अगर आप जाएं तो मैं कहूँगा आपने न्यूनतम कार्यक्रम को समझ लिया और उसके लिए जो आपके फ़र्ज़ और कर्तव्य थे इसके बारे में नोट कर लिया। ऐसी इसी इन्हीं आवश्यकताओं को पूरा कराने के लिए और आपको यही प्रेरणा देने के लिए इस कल्प साधना शिविर में बुलाया था। आप कल्प साधना शिविर ख़त्म करते हैं, आप जाइए, लेकिन इन मोटी मोटी बातों को ध्यान रखिए जिसको हमने कर्मयोग के नाम से, क्रियायोग के नाम से आपके सामने पेश किया। समाप्त।